आज से 100 साल पहले इतिहास ने आगे बढ़कर मोहनदास करमचंद गांधी का हाथ थामकर चंपारण के हाथ में रख दिया था। 15 अप्रैल 1917 की काली स्याह रात, आधी रात होने को है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पटना से आई एक ट्रेन रुकती है। राजकुमार शुक्ला के साथ एक मुसाफिर ट्रेन से उतरता है। इतिहास के प्रोफेसर आचार्य जेबी कृपलानी उसका स्वागत करने स्टेशन आए हुए हैं। उनके हाथ में लालटेने हैं, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो तीसरे दर्जे में सफर कर रहा है। क्या वजह है कि एक शख्स गुजरात से करीब 2000 किलोमीटर का रास्ता तय कर वहां पहुंचा था? गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत बताते हैं।
गांधी जी चंपारण जाने से पहले गोपाल कृष्ण गोखले को दिए हुए उस वचन की पूर्ति में लगे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंह बंद करके आंखें खुली करके एक साल भारत को देखो। वो पूरी प्रक्रिया उस एक साल में चली और उस प्रक्रिया के बाद स्वाभाविक था कि गांधी जी के सामने सवाल ये था कि जो भारत देखा उन्होंने और जो दक्षिण अफ्रीका में किया उन्होंने, उसके बाद की भूमिका उनकी क्या बनती है। तो वो अपनी भूमिका की तलाश में हैं। ऐसे समय में रामकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति कांग्रेस के अधिवेशन में पहुँचते हैं। वो पहले से भी कांग्रेस के अधिवेशन में आते रहे हैं और उनको ये लगता है कि जितने नेता वहाँ हैं जो कांग्रेस के मन से भाषण करते हैं, बातें कहते हैं, उनमें ये आदमी कुछ अलग तरह का है। इस आदमी की बात में थोड़ी सच्चाई भी दिखती है और शायद कुछ कर गुजरने की इच्छा भी उनको लगी होगी उनकी बातचीत में। तो वो गांधी जी से मिलते हैं और उनको ये बताते हैं कि चंपारण से मैं आया हूँ और वहाँ किसानों की ऐसी स्थिति है। गांधी जी कई बार टालते हैं उनको, क्योंकि गांधी जी बिहार भी नहीं जानते हैं कि कहाँ है, चंपारण तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, भारत के किसानों से भी बहुत खास परिचय नहीं है उनका, और ये नील की जो खेती का संकट है वो तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि क्या चीज़ है ये, इसलिए वो इसमें बहुत पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये रामकुमार शुक्ल इस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं कि जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ वो उपस्थित रहते हैं और एक ही बात कहते हैं कि समय तो दीजिए, कब चलेंगे आप। तो करीब करीब ऐसा लगता है विवरण पढ़ करके कि करीब करीब उनसे एक तरह से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से ही गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आइए कलकत्ता आइए और वहाँ से मैं आपके साथ चलता हूँ। और रामकुमार शुक्ल अपने दिए समय पर कलकत्ता पहुँच जाते हैं और उनको लेकर के वहाँ से चल पड़ते हैं। तो गांधी जी आकर्षित हुए चंपारण जाने के लिए, इससे बेहतर शायद ये होगा कहना कि ऐतिहासिक शक्तियाँ कुछ इस तरह से तैयार हो रही थीं कि उन्होंने गांधी को ठेल कर चंपारण पहुँचा दिया।
मुजफ्फरपुर में रह रहे आचार्य कृपलानी जब 9:30 बजे क्लब से अपने हॉस्टल लौटते हैं तो अपनी मेज पर एक टेलीग्राम पाते हैं जिसमें कहा गया है कि अब से कुछ घंटे बाद गांधी वहां ट्रेन से पहुंचने वाले हैं। कृपलानी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े आदमी का स्वागत वो किस तरह से करें। कृपलानी अपनी आत्मकथा माई टाइम्स में लिखते हैं।
दरभंगा के एक ब्राह्मण छात्र ने सलाह दी कि इतने बड़े आदमी का स्वागत हिंदू रीति से आरती उतार कर करना चाहिए। मैंने वो बात मान ली। छात्रों ने आसपास के बगीचों से बहुत सारे फूल तोड़े। आरती के लिए हर चीज़ जमा हो गई सिवाय नारियल के। इतनी रात उसे बाजार से तो मंगवाया नहीं जा सकता था। हमारे बगीचे में एक नारियल का पेड़ था। सवाल उठा कि उस पर चढ़े कौन? कोई भी सामने नहीं आया, इसलिए मैं खुद ही नारियल के पेड़ पर चढ़ा और कई हरे नारियल तोड़कर नीचे उतर गया।
बहरहाल गांधी का स्वागत किया जाता है। उनके हाथ में कपड़े के एक टुकड़े से बंधे कुछ कागज हैं। शुक्ला के हाथ में उनका एक छोटा सा बिस्तर बंद है। गांधी की आरती की जाती है, लेकिन कृपलानी नोट करते हैं कि गांधी को यह सब रास नहीं आ रहा। कृपलानी आगे लिखते हैं,
उसी ट्रेन से मेरा एक जमींदार दोस्त भी उतरा। स्टेशन पर उसकी बग्घी उसका इंतजार कर रही थी। मैंने उससे अनुरोध किया कि वो अपनी बग्घी हमें दे दे ताकि हम उस पर गांधी जी को मेरे घर ले जा सकें। जब हम बग्घी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि लड़कों ने उसमें जूते घोड़े हटा दिए थे और वो उसमें गांधी जी को बैठाकर खुद खींचने के लिए तैयार थे। जब गांधी जी ने ये देखा तो वो बोले कि वो इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होंगे कि कोई उन्हें इस तरह खींच कर ले जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं पैदल ही जाना पसंद करूंगा। मैंने लड़कों से कहा कि वो इस बात पर जोर ना दें। जब हमारी बग्घी चली तो मुझे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मुझे उसी समय लग गया कि लड़कों ने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। उस जमाने में बिहार में इस तरह की बग्घियाँ होती थीं कि अंदर बैठा शख्स नहीं देख पाता था कि उसे चला कौन रहा है। जब हम हॉस्टल पहुंचे तो गांधी जी को पता चला कि लड़कों ने क्या किया है। वो बहुत नाराज हुए और कहा, आपने मुझे धोखा दिया है।
अब जरा गांधी के कोलकाता से पटना आने की कहानी भी सुन लीजिए। उनको चंपारण लाने वाले रामकुमार शुक्ल उनके साथ हैं। वो उनको पटना के नामी वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाते हैं।
वो आ तो जाते हैं, पटना रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और वो इस बात पर वो आश्वस्त हैं कि साथ में रामकुमार शुक्ल हैं, तो इनको मालूम ही है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। लेकिन रामकुमार शुक्ल बड़े भोले आदमी साबित होते हैं, क्योंकि पटना पहुंच के उनको भी समझ में नहीं आता है कि इनको रात में ठहराऊँ कहाँ। तो रामकुमार शुक्ल चंपारण के वो किसान हैं जिनका मुकदमा एक वकील लड़ता है जो पटना में है, तो सोचते हैं कि वकील साहब के ही घर पर ले जाते हैं, पहचाना हुआ आदमी है। जब वकील साहब की कोठी पर पहुँचते हैं तो बाहर वो एक नेम प्लेट देखते हैं जिस पर राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है। उससे पहले गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी को जानते भी नहीं हैं, और घर ले जाता है उनको। वहाँ जा कहता है तो पता चलता है कि वो तो पूरी गए हुए हैं, यहाँ नहीं हैं। तो भी वो कहता है कि भाई हमारे मेहमान हैं, ठहरना है। तो नौकर लोग बरामदे में उनको जगह दे देते हैं जहाँ सामान्य में वकील को ठहराते होंगे वो लोग। और बाथरूम वगैरह जाना है तो कह देते हैं कि नहीं, अंदर का बाथरूम तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बाहर जो बना हुआ है वही इस्तेमाल कीजिए। वो तुरंत अपनी डायरी निकालते हैं और उस डायरी में से मौलाना मजहरुल हक का पता निकालते हैं, जो मजहरुल हक इंग्लैंड में उनके साथ पढ़ाई करते थे। इतने लंबे समय के बाद वो मजहरुल हक को संवाद भेजते हैं कि मैं आया हुआ हूँ। मजहरुल हक दौड़े दौड़े बेचारे आते हैं और उनको लेकर के अपने कोठी पर चले जाते हैं। तो ये जो अनुभव हुआ राजेंद्र बाबू के दरवाजे पर उनको, राजेंद्र बाबू की अनुपस्थिति में और अपरिचय में भी, तो वो तो चले गए वहाँ से। कि राजेंद्र बाबू को बहुत ही कट गई वो बात जब आने पर उनको पता चला, और जब गांधी जी का आमना सामना हुआ तो कई बार माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं आप ये बात भूल जाइए, वो तो ठीक ही था, मुझको कोई जानता नहीं था इसलिए ऐसा हुआ।
चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति मात्र ही नील की खेती करने वाले किसानों में एक खास तरह की उमंग भर देती है। लेकिन नील की खेती करने वाले अंग्रेज प्लांटर्स उनसे इतने क्षुब्ध होते हैं कि उन्हें अगले ही दिन चंपारण छोड़ने की नोटिस पकड़ा दी जाती है।
गांधी जी जब चंपारण पहुंचते हैं तो नौसिखो आदमी नहीं है, बिल्कुल परिपक्व, दक्षिण अफ्रीका की एक बहुत बड़ी लड़ाई का नेतृत्व करके उसमें विजयी होकर वो भारत आए हैं, तो बिल्कुल पके पकाए आदमी हैं। यहाँ आकर भूमिका जरूर उन्होंने ऐसी ली है कि मैं इस देश को जानता नहीं हूँ तो मुझको तो सबकी बात सुनकर चलना चाहिए। और जिस तरह की परिस्थिति वो चंपारण में पड़ते हैं, करीब करीब ठीक वैसी ही परिस्थिति में वो दक्षिण अफ्रीका से गुजर चुके हैं, इसलिए उनके लिए नया कुछ भी नहीं है। वो आने से पहले इस बात की तैयारी कर चुके हैं कि शायद वहाँ से पहुँचते ही मुझको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो अपना बयान भी बना कर आए हैं कि अगर निकाला जाएगा तो उनको क्या कहना है। तो इसीलिए जब उनको वो नोटिस मिलती है, उस समय वो कहीं चंपारण के दूर इलाके में जा रहे हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं, हाथी पर ज़िंदगी में पहली बार बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से अपने को संभाले हुए हैं, तब तक पीछे से एक साइकिल पर आदमी आता है और वो कागज़ लहरा कर उनको दिखाता है कि उनके लिए कुछ लेकर आया है, तो वो रुकते हैं, उतरते हैं और उनको आदेश मिलता है कि आपको ज़िला छोड़ देना चाहिए। तो ये आदेश उनके लिए बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि ऐसे आदेश उनको दक्षिण अफ्रीका में बहुत मिल चुके थे और तब उनसे कैसे निपटना है वो भी उनको मालूम था। इसीलिए वो तुरंत उसके साथ चल देते हैं कि जिसने आदेश दिया है चलो उससे मिल लेते हैं। और कई तरह की सवारियों से गुजरते हुए वो पहुँचते हैं वहाँ पर और वो कहता है कि भाई इसकी पावती पर साइन करके हमको दे दीजिए कि आपको मैंने दे दिया ऑर्डर। तो उसी कागज़ के पीछे वो चिट्ठी लिख देते हैं जिला मजिस्ट्रेट को और उसमें सिर्फ चार लाइनें लिखते हैं कि आपका आदेश मिला और मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपके आदेश को मान सकूं क्योंकि मैं जिला छोड़कर नहीं जाऊंगा।
तब तक सरकार के आदेश की इस तरह अवज्ञा करने की जुर्रत किसी भारतीय ने नहीं दिखाई थी। गांधी की जीवनी लिखने वाले उनके पौत्र राजमोहन गांधी बताते हैं।
तो जब अंग्रेजी अफसर ने कहा गांधी जी से कि आप यहाँ से निकलिए, तो गांधी जी ने कहा मैं नहीं निकलने वाला हूँ, आपको सजा देनी है तो दीजिए, आपका ये गलत आदेश है, मैं तो लोगों की मदद के लिए आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। जब उन्होंने ये नहीं शब्द इस्तेमाल किया, मैं नहीं आपकी बात मानूंगा, तो उसका असर देश भर में काफी हुआ और अखबारों में भी ये बात छपी कि ये गांधी करके गांधी अभी 2 साल पहले वापस हिंदुस्तान आया है साउथ अफ्रीका से, लेकिन ये इतने दूर अपने गुजरात से यहाँ पहुँच गया है चंपारण में, तो कहता है कि मैं नहीं सरकार का आदेश मानूंगा क्योंकि मेरी कॉन्शियंस कहती है, मेरी अंतरात्मा कहती है गलत बात है।
अदालत में गांधी साफ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कानून में उनकी आस्था नहीं है, लेकिन उनकी अंतरात्मा की आवाज कानून से कहीं बढ़कर है। चंपारण में गांधी इतना बदलते हैं कि नाम धाम काम वस्त्र बोली सब बदलते चले जाते हैं, उनको नाम भी एक नया मिलता है, बापू।
चंपारण में दरअसल में सत्याग्रह तो कुछ हुआ ही नहीं था, एक भी जुलूस नहीं निकला, एक भी धरना नहीं हुआ, कहीं नारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गांधी जी ने पहुँच करके पहला काम ये किया कि भाई मैं सच में जानूँ तो कि क्या समस्या है, तो मुझको कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। किसानों से बात शुरू करते हैं और उनको दिमाग में आता है कि इन सबको रिकॉर्ड बना लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को अगर कहना हो कि आपके यहाँ न्याय हो रहा है तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो बस वो जो लोगों के बयान दर्ज करने वाला काम शुरू किया उन्होंने, उसी ने तो सबको दहशत में डाल दिया। तो बहुत मार्के की बात है कि सच्चाई को दर्ज करने में भी बड़ी ताकत होती है, सच्चाई कहने में तो बहुत आगे की बात हो जाती है। तो प्रशासन को जैसे ही पता चला कि वहाँ पर बयान दर्ज हो रहा है और किसान खुद आकर बोल रहे हैं, तो वो लोग घबराए कि ये क्या हो रहा है। और फिर उन लोगों ने ऐसा किया कि एक दरोगा को बिठा दिया वहाँ पर। तो गांधी जी ने कहा कि उसको ठीक से कुर्सी वर्सी दे दो बैठने के लिए, वो भी सुनेगा और वो भी देखेगा कि कौन क्या कर रहा है। न तो गांधी जी को भाषा समझ में आती थी, न वो हिंदी ठीक से बोल पाते थे उन लोगों के साथ, और जो सरकारी दस्तावेज थे सब कैथी भाषा में लिखे जाते थे, तो सब कुछ गांधी जी के लिए अजनबी था। तो जितने बड़े वकील हैं राजेंद्र बाबू और उनके साथ के लोग, वो पूछते हैं कि भाई हम क्या करें आपके लिए, तो कहते हैं कि न तो आपकी वकालत की मुझको ज़रूरत है और न मुझको आपकी अदालत की ज़रूरत है, मुझको तो आपसे क्लर्कों का काम लेना है। ये लोग जो बोल रहे हैं उसको दर्ज करें और जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझको समझें, यही काम आपको करना है। इसने मिला करके वो माहौल गढ़ा, आज के शब्द में कहूँ तो शायद फियर साइकोसिस प्रशासन में ऐसा पैदा हुआ कि वो लोग तुरंत घबरा गए, उनको समझ भी नहीं आया कि इस आदमी से कैसे डील करना चाहिए। और ये आदमी खुली किताब की तरह था, वो कलेक्टर के यहाँ पहुँच करके उसने खुद ही दे दिया कि इतने बयान आज तक हुए हैं, आप देख लीजिए, फिर आगे की बात मैं देखता हूँ। तो ये जो खुलापन था उनके व्यवहार का, जिसकी पूरी ट्रेनिंग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कर ली थी, वो पूरे आश्वस्त है कि खुलेपन का जो हथियार है वो बहुत मजबूत होता है, तो उसका उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया और इस तरह से उस परिस्थिति को उन्होंने बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे वो सब लोग उसमें जुड़ गए।
चंपारण में गांधी किसानों की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, सामाजिक दूरियों को भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। वो आग्रह करते हैं कि सबकी रसोई एक जगह बने, हर बड़ा शख्स अपने साथ एक सेवक या रसोईया लेकर आया हुआ होता है। गांधी इसे अनावश्यक बताते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
गांधी जी के साथ रहने की वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आया। मैं जाति नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करता था और गैर ब्राह्मण के हाथ का छुआ कुछ भी नहीं खाता था। धीरे धीरे हम सब लोग साथ खाना खाने लगे। एक एक कर हमने अपने सारे नौकर वापस भेज दिए। हम अपने कपड़े खुद धोते, कुएं से खुद पानी निकालते और अपने बर्तन भी खुद ही धोते। अगर हमें पास के गांव में जाना होता तो हम पैदल ही जाते। ट्रेनों में हम तीसरे दर्जे में सफर करते। हमने बिना पलक झपकाए अपने जीवन के सारे आराम छोड़ दिए थे।
दिलचस्प बात यह है कि पूरे भारत का बेहतरीन टैलेंट गांधी की मदद के लिए चंपारण में है। आचार्य कृपलानी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सीएफ एंड्रयूज हैं और राजेंद्र प्रसाद के ससुर ब्रजकिशोर प्रसाद भी हैं।
सबसे बड़ा नाम अगर कहूँ तो ब्रजकिशोर प्रसाद जी का है, जिनके बारे में खुद उन्होंने लिखा है कि इस पूरे अभियान के सेनापति तो वही थे। ब्रजकिशोर बाबू कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे उस जमाने में, वकील थे बहुत बड़े। राजेंद्र बाबू की शादी ब्रजकिशोर बाबू की एक बेटी से हुई है, तो उन्होंने ही मोबिलाइजेशन का सारा काम तो उन्होंने किया। वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र थे, हालांकि गांधी जी से उस समय उनका बहुत अच्छा परिचय नहीं था, लेकिन फिर भी। लेकिन गांधी जी ने दूसरा नाम जो लिखा है वो राजेंद्र बाबू का लिखा है। उस समय राजेंद्र बाबू बिल्कुल नई उम्र के एक नौजवान वकील थे, खासी अच्छी वकालत थी, काफ़ी पैसा कमाते थे। तो लिखा है उन्होंने कि ये अद्भुत आदमी है, ये शब्द लिखे हैं उन्होंने कि इस आदमी के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो एक बार सुन लेता है वो कभी भूलता नहीं है, और वकील की बुद्धि है, इसने तो मुझको जीत लिया है।
जैसे ही सीएफ एंड्रयूज गांधी के समर्थन में उनके पास पहुंचते हैं, सबकी निगाहें उनके ऊपर कर जाती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं,
उसी समय सीएफ एंड्रयूज महात्मा गांधी से मिलने मोतिहारी आए। मुझे अभी भी याद है, वो इक्के पर वहां पहुंचे थे, जिस पर बैठने के वो बिल्कुल भी आदी नहीं थे। मैंने नोट किया कि इक्के के पहिए से टकराकर उनका जूता खराब हो गया था। इक्के पर बैठा एक यूरोपीय शख्स और उसका स्थानीय लोगों से गर्मजोशी से मिलना हम लोगों के लिए दुर्लभ दृश्य था। हम लोगों ने सुन रखा था कि एंड्रयूज असरदार व्यक्ति हैं और उनकी पहुंच वायसराय तक थी।
गांधी के प्रयासों का परिणाम है कि किसानों की समस्याओं के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई जाती है। गांधी जी भी इसके सदस्य बनाए जाते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर तीन कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। किसानों के लगान में कमी लाई जाती है और उन्हें क्षतिपूर्ति का धन भी मिलता है।
मैं कहूँगा कि ये गांधी जी की भारत में पहली पाठशाला थी जहाँ गांधी जी की पढ़ाई हुई। इस देश को उन्होंने समझा, इस देश के लोगों को बहुत नज़दीक से देखा, उनकी सरलता और सादगी के पीछे की जो ताकत है उसको पहचाना उन्होंने, क्योंकि अभी तक उस सादगी और सरलता के पीछे की मूर्खता को हम लोग पहचानते थे, उन्होंने उस ताकत को पहचाना। लोक भाषा में काम करने की ताकत को उन्होंने सीखा, क्योंकि बाद में उन भाषाओं में वो काम करने लगे। तो जिसको कहते हैं ना कि आप एक ठौर ढूंढते हो अपना, जहाँ पर पांव अड़ा करके आगे बढ़ना है, चंपारण के आंदोलन की वो भूमिका गांधी के जीवन में है।
रेहान पटेल, BBC दिल्ली।